नमो नारायण नमः नरोत्तमाय नमः। जय शिव शंकर महादेव शंभु श्री रुद्रमहिमा श्री शिव महापुराणे अथा सप्तोऽध्यायः। इस अध्याय में भगवान विष्णु की नाभि से कमल जपट प्रभाव से शिव इच्छा से ब्रह्मा जी उससे प्रकट होने के कमल नाल के उद्धम का पता लगाने में असमर्थ तप करना और श्री हरि का उन्हें दर्शन देना। फिर विवाद शुरू होता है और उसके बाद उनके बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना और उसे और सा पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। आगे ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में स्नान करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उनकी कांकी कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अत्यंत योजन थी। वह कमल करोड़ सूर्य के समान प्रकाशित सुंदर शुभम पूर्ण तत्वों से युक्त अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम्ब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिक कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और सिर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंतिक थे। हे तत्, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपना शरीर जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा। वहाँ भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। वह पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के शोक कोष को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। भगवान नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता ना चल सका। तब मैं मोहित किंकर्दमविभूढ़ होकर एक क्षण नहीं वहीं रुक गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी जो सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही चार भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधारा के समान श्याम कांति सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि बहुमूल्य आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रशंसा से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्य स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को ना जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन स्नातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं? उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्र जाग करके सैया से उठकर बैठ गए। तांकर अविकल रूप से निर्दय रहित होकर उन राजी बलोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। विष्णु बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाधूतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपका सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षे, उनके मंद हास्य युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण सत्पुत्रा मान बैठा। देव श्रेष्ठों में उन जनार्दन भगवान विष्णु ने विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारण भूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं भी संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवक्ता, सनातन अजन्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाला, विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडिकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे शंभव, अज, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। मैंने इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रोध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जग का कर्ता मानता है। विष्णु बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझे अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझे जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुहूत पुरुतुष्ट विष्णु अच्युत ईशान संसार की उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही करता, हरता और भरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्मा तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझमें व्याप्त है, ऐसा आप जान ले। मैंने ही सृष्टि के पहले जग के 24 अवैध तत्वों की रचना की है। उन्हें तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण करता है होता है और क्रोध भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उससे 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदंतर उनसे रूप, रस, दंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं, मन एवं चक्षु, जीव, घ्राण, श्रोत तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेन्द्रियां और वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 क्रमेन्द्रियां, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए, मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं? आप ना ईश्वर है ना परम ब्रह्मा है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस पहले कालीन महासमुद्र के मध्य में रजोगुण के कारण परस्पर बढ़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों काला अग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। वहाँ उपमा रहित अनिर्देश बिना किसी के द्वारा उपस्थित अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो, हम दोनों के माध्यम तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊँगा और हे प्रजनाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्नपूर्वक सी रूपण की ओर जाएं। ब्रह्मा बोले, तब ऐसा कहकर विश्व आत्मा भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जाप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। इसी समय विश्व आत्मा नारायण भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किए, 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले, श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त, प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान, दीर्घ नासिका से सुशोभित, भयंकर धूर घूर की ध्वनि करने वाले, छोटे पैरों से युक्त, विचित्र अंगों वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ ए तथा अनुपम वाराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेतवारा नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षे, उस मनुष्य की कालगणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावारा रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी ना देख सके। हे हरिशूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत पता लगाने के लिए वेग से ऊपर ओर जाता रहा। यत्नपूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के अंत थक गया और उनका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्व देव स्वरूप महाकाय कमललोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से प्रसवों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश नाम तथा कर्म से रहित आलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तांचर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम करके कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपना स्वरूप का दर्शन कराइए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से अवेष्टित हम दोनों को वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। श्री शिव महापुराणे रुद्र संहिता सृष्टि खंड 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराणे रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड 8वां अध्याय। अब ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन प्राप्त होना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर, हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वह उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम, ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से प्रलुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त खड़े रहे। वे सर्वथा वेद भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में स्नातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, तदनंतर उत्तर में उकार का, मध्यम भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वन आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वन को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्यम भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तांकर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरिया तीत अमल निश्चल निरुप्रदव निद्वंद आदित्य शून्यमय ब्रहा और अभ्यंतर भेद से रहित बहाभ्यंतर भेद से युक्त जग के भीतर बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य मुरंत से रहित आनंद आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि ने यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा कर विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अर्थात अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव ही हैं। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परम ब्रह्मा को एक अक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जग के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह दे चढ़ने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अहंकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्रीहरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते थे। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो आऊकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह शुभनमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ और तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही वहाँ 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनकी संख्या का है, वे समस्त लोगों के श्रेष्ठा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ उ और मा इन त्रिविध रूप में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सम्मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। तब इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने सती शंभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अवदाय से सुशोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गोर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से सुशोभित था। उस परम उद्धार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि तीर्थार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हर्षवा आकार उनका मसत और दीर्घ आकार ललाट है। इकार दाहिना नेत और ईकार बायां नेत। उकार उनका दाहिना और औकार बायां कान है। त्रिकार उन परमेश्वर का दाया कपाल और त्रिकार उनका बायां कपाल। ली और लिम ये उनकी नासिका के 2 क्षेत्र हैं। एकार उनका सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार आधर है। औकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। आम और अहा उन देवादेव शूलधारी शिव के दोनों तलु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। टा आदि और ता आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पटार पेट है, फटार दाहिना प्रसव बताया जाता है और बकार को बाएं प्रसव। भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक या रला ला वा शा शा तथा शा ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और छकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय स्वरूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ तृप्त हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीर धारी महेश्वर शिव के दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। 5 अक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। न अभिचारिक सिद्धि के लिए प्रयोग किए जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति क्रम की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्था में आने वाले कर्म के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, 5 अक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणमूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमासी वही तुम हो यह महाकाव्य कहा। इस प्रकार उत्त 5 मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। इसके बाद ऋता यजो श्याम रूप वर्णों को कलाओं से युक्त ईशान ईशो के मुकुट पुरातन पुरुष सा घोर हृदय मनोहर सर्वगुहा सदाशिव तांडव नित्र आदि कलाओं में वाम पाद पर अवस्थित कर रखने वाले महादेव महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले चारों ओर चरण और नेत्रों वाले कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति सृष्टि स्थिति संहार के कारण भूत वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। श्री शिव महापुराणे दित्य रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड शब्द ब्रह्मा तनुवर्णम नामक आठवा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण नौमा अध्याय। अब उमा सहित भगवान शिव का प्रकट उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र सुशोभा पाते थे भाल देश में। चरमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवन विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ में नील चिंग था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्ममय त्रिपुण से अंतिक थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचन द्वारा उनसे स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित होकर उन विष्णुदेव को श्वास रूप से वेदों का उपदेश दिया है मुने। उसके बाद शिव ने परात्मा श्रीहरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके आप सब एवं अन्य जो कहने योग्य हैं वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधि निधान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक यह कहने लगे। श्री शिव उवाचा। श्री बोले, हे सुरश्रेष्ठ गण, में आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भय को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही धैय है। इस समय लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दे दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे मुनि देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोग कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरे स्वरूप भूत प्रदेश से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने प्रसव से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम प्रसव से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्यमानो, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की वह यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर का हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देने चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा विचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार ग्रहण करते हैं। कीजिए हे तत्, अपनी लीला से आप अवतार ग्रहण कीजिए। हे तत्, आप परमेश्वर हैं, आप लोगों की सहायता करें। हे देवेश्वर, हम दोनों का विवाद सुखदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए। उन श्रीहरि से पुनः कहा, वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़ के खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और पले रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र का नाम धारण करके तीनों स्वरूप में विभत हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, वह प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिमय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यहाँ मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझमें और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूप में विभक्त हो गया है, अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसा ही नहीं है जैसे एक शुवन खंड में सम रूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में और नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विधानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए कि ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से ना देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा ये जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोग सदा मन से मेरे यथार्थ रूप स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रूकुटि से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रकट कहा गया है, जैसे कि लोगों ने कहा है कि हर तमस प्रतीक हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तमस ही नहीं वैकृत सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारित अहंकार की ही सृष्टि है। यह तमस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तमस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि का पालन करने वाले हों। मेरे अंश से रुद्र प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति है उन्हीं की शक्ति भूता वागदेवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इस प्रकृति से देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य कर्मश सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति अंशभूत वाक्य देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूत प्रातपर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्य द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हैं। अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रद्युत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीन रूपों में विभक्त हुआ हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे आदित्य नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्मा हैं। तीनों लोगों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर चतुर्गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सतोगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। तथा ब्रह्मा इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोक में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा जी के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। पद्मकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे, उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश्वर हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। श्री शिव महापुराण रुद्र सहिताय प्रथम सृष्टि खंड शिव तत्व वर्णन नामक नवाध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण दसो अध्याय। अब श्री हरि को सृष्टि की रचा भार धारण भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर उवाचा। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोगों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्साह कार्य में आपकी सहायता करूँगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्तट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चय ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों करूँगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्याय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, उसके देश करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नर्क में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के लिए तथा पूज्य होकर प्राणियों का निर्ग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहे। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ मान बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझमें और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से समझिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा गया जाता है, उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से वह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिणाम है। इस प्रकार 30 दिन का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्षों के परिणाम को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्षों के परिणाम तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तांत्र शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी निधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सर्वोत्तम। दिन रात में मिलकर 21,100 गुना एवं 600 अर्थात 21,600 कही गई है। और 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 8 पलों की एक घाटी और 60 घाटी परिणामों का एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव ने निश्वास और उच्छ्वास को श्वास की गणना नहीं की जा सकती है। अतः शिवजी सदैव प्रबद्ध और अच्छे हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपनी विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हृदय वर्ष भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, दानचर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर शिव ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथ से हम दोनों के हाथ को दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्वदुख हारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश कर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवासल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। ले कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहते हैं और लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो लिंग शिवलिंग के स्थित समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थक नहीं हूँ। श्री शिव महापुराण चंद्र द्वितीय सहित रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में उपाख्यान परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।